हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद आठवां अध्याय श्लोक संख्या 25 एंड 26। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरन्नस्य ज्ञानंजना शलाखया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदामहयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गारंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुतदेवी प्रणन्मामि हरि प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। पहला स्कंद आठवां अध्याय श्लोक संख्या 25। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। कुंती महारानी भगवान से कह रही हैं, विपदः संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर् भवदर्शनम् विपदः सन्तु ताशाश्वात् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतु दर्शनं यत् स्यात् अपुनर् भवदर्शनम् विपदः सन्तु ताशाश्वात् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतु दर्शनं यत् स्यात् अपुनर् भवदर्शनम् विपदः सन्तु ताशाश्वात् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतु दर्शनं यत् स्यात् अपुनर् भवदर्शनम् शब्दात् विपदः सन्तु ताः शाश्वत। विपद अर्थात विपत्तियां, सन्तु अर्थात हो, ता सारी शाश्वत मतलब पुनः पुनः, तत्र तत्र वहां तहां वहां, जगद्गुरु हे जगत के स्वामी, भवतः दर्शन यत, भवतः आपकी दर्शनम अर्थात भेंट यत जो, स्यात् अपुनर्भव दर्शन, स्यात् मतलब हो, अपुन मतलब फिर नहीं, भव दर्शनम अर्थात जन मृत्यु को बारंबार देखना। अनुवाद, कुंती महारानी कहती हैं, हे भगवान, मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां फिर आए, जिससे हम आपका पुनः पुनः दर्शन कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का यह अर्थ है कि हमें बारंबार जन्म मृत्यु को नहीं भोगना पड़ेगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि सामान्यता आर्त, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग, जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हों, माया द्वारा गुमराह होने के कारण भगवान के पास नहीं भटकते। अतएव पुण्य आत्मा के लिए संकट आने पर भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करना जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना है। अतः भले ही तथा कथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वे भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती हैं, जिसका अर्थ है मुक्ति। जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, जो अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति लाभ करता है जितनी सरलता से गौखुर के निशान को लांगा जा सकता है। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान में कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जहां पग पग पर संकट हो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने इस जगत को आपत्तियों से परिपूर्ण कष्टप्रद स्थान बताया है। अल्पज्ञानी पुरुष बिना यह समझे कि यह स्थान आपत्तियों से परिपूर्ण है, इन आपत्तियों के साथ समझौता करने को तैयार हो जाते हैं, उन्हें भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही पता नहीं होता जो आनंदमयी तथा निरापद है। अतएव चतुर मनुष्य का कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती हैं। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है चूंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतएव तथाकथित आपत्तियां मिथ्या होती हैं। स्वप्न में मनुष्य अपने को शेर द्वारा निगला जाता देख सकता है और वह इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में न तो शेर रहता है और न ही आपत्ति। यह तो कोरा स्वप्न है। इसी प्रकार जीवन की सारी आपत्तियां स्वप्न तुल्य हैं। यदि कोई भक्ति द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है तो लाभ ही लाभ है। नवदा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में सदा एक अग्रिम पग है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद आठवां अध्याय, जिसका शीर्षक है कुंती महारानी द्वारा प्रार्थना। हम कुंती महारानी के द्वारा की हुई प्रार्थनाओं को पढ़कर उन्हें समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट से उन श्लोकों को एक बार फिर से दोहराएंगे ताकि हम ले में आज के श्लोकों को समझ सकें सीरीज से। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृति परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर अंतर बहिरवस्थितं। हे आदि पुरुष भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप संसार में अलक्ष्य हो, दिखते नहीं हो, परंतु सर्वभूतान समस्त जीवों के अंतर बहिरवस्थितम अंदर और बाहर आप अवस्थित हो। माया जवनिकाचन्नम अज्ञादोक्षजम अव्ययम् न लक्ष्यसि मूढदृश्या नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजमित्राय नमस्ते पंकजांग्रये। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिचिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपत्कणात्। कुंती महारानी भगवान से अपनी समस्त जो उनके ऊपर आपत्तियां आई हैं उनके विषय में कहती हैं कि आपने हमें हमारी हर आपत्ति में विमोचिता हम च सहात्म जावे भो। आपने तो अपनी माता से भी अधिक मुझसे स्नेह किया, क्योंकि अपने माता के पुत्रों को भी आपने नहीं बचाया, परंतु आपने सदैव मेरी रक्षा की, हर पग पर मेरी रक्षा की और साथ में सहात्म जावे भो मेरे बच्चों की भी रक्षा की। त्वयैव नाथे न मुहुर विपत् गणात्। बार बार विपत्तियां आने पर तो कोई भी साथ छोड़ देता है, परंतु आपने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि आप जानते थे कि मैं अनाथ नहीं हूँ। आपके अतिरिक्त मेरा और कोई सहारा नहीं था। और आगे अपनी विपत्तियों को गिनाते हुए श्लोक नंबर 24 में बताया, विशान महात्म्य पुरुषाद दर्शनात् असत् सभाया वनवास कृच्छ्रत मृदि मृदि नेकमाः रथास्त्रतो द्रोण्यास्त्रतश्चास्म हरि विरक्षिता। आप हरि हो, आप हमारी समस्त अमंगल को हरते थे। जब जब कोई भी हमारे ऊपर विपत्ति आती तो आप हर एक विपत्ति में हमारी रक्षा करते। जब भी कोई संकट आता तो आप तुरंत आ जाते और कष्टों में हमारी सहायता करते। और आज कुंती महारानी अत्यंत ही विलक्षण प्रार्थना कर रही हैं। वैदिक इतिहास में एक यही इकलौती प्रार्थना है जिसमें एक भक्त है कुंती महारानी, जो भगवान से विपत्ति मांग रही है। भगवान को कहती है, विपदः संतुता शाश्वत। हे भगवान, विपत्तियां हो, संतु मतलब हो, ता मतलब वो सारी विपत्तियां हो, कब तक हो? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कब तक होनी चाहिए? तो कुंती महारानी कहती है, शाश्वत, पग पग पर, सर्वत्र हो, पुनः पुनः हो, सब जगह हो, सब समय हो, तत्र तत्र, वो सारी विपत्तियां। तत्र तत्र का मतलब है, मैं जहां भी जाऊं, जहां भी रहूं, जैसे भी रहूं, मुझे केवल विपत्तियां ही प्रदान करो कृष्ण। मैं शाश्वत रूप से विपत्तियों से घिरी हुई रहना चाहती हूँ। और आगे कहती हैं, हे जगत गुरु। गुरु का मतलब होता है जो हित करता है, उसको गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब ये नहीं होता कि वो उपदेश कर रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता उसे कि किसी को समझ में आ रहा है। वो हृदय से आपके लिए करुणा होती है उसके हृदय में, और वो दिल से चाहता है आपकी, आपके ऊपर कृपा होनी चाहिए, आपका हित होना चाहिए, इसीलिए तो वो उपदेश कर रहा है। तो वास्तव में इस संसार में हर कोई गुरु जो होते हैं वो अपने शिष्य का हित करते हैं, लेकिन भगवान जो है वो जगत गुरु हैं, यानी पूरे जगत का हित करने वाले हैं। कृष्ण भक्त का हित क्या है? कृष्ण भक्त का हित है विपत्ति। ये कुंती महारानी आज दर्शा रही हैं कि हे जगत के हितैषी, हे समस्त जीवों का हित करने वाले, मैं चाहती हूँ कि हमारे जीवन में समस्त विपत्तियां हमारे जीवन के पग पग में, जीवन की हर स्थिति में और जीवन के हर समय में यूं ही आती रहें। विपदः संतुतः शाश्वत, वो सारी विपत्तियां शाश्वत रूप से हमारे पास होती रहें। क्यों? भवतो दर्शनम यत् स्यात्। भवतो का मतलब होता है आपका, दर्शनम दर्शन होता है, यत् स्यात् जिनसे। क्योंकि ये विपत्तियां ऐसी हैं, जब हम विपत्तियों में भगवान को हृदय से पुकारते हैं तो भगवान उसी क्षण अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रस्तुत हो जाते। भगवान को कुंती महारानी कहती हैं, जिन विपत्तियों में आपने हमारी रक्षा की है वो सारी विपत्तियां जीवन भर यूं ही आती रहे। अभी भगवान ने पूछा, समझो कि ऐसा क्यों चाहती हो, क्यों आप बार बार चाहती हो कि मैं आपके ऊपर विपत्ति है? कोई ऐसा चाहता है कि मेरे ऊपर कोई संकट आए? आप बुआ जी ऐसा क्यों चाहती हो? तब उसका उत्तर देती हैं, क्योंकि भवतो दर्शनम यत् स्यात्। क्योंकि संकट ही में तो आपका दर्शन होता है। संकट में जब जीव हृदय से भगवान को पुकारता है तो वास्तव में वही पुकार सुनकर भगवान इतने उद्विग्न हो जाते हैं भक्त को दर्शन देने के लिए, उसका संकट दूर करने के लिए। वो कुछ नहीं, हम देखते हैं जब गजेंद्र ने प्रार्थना की थी, बहुत ही हृदय से चीख कर भगवान को बुलाया था, और उसकी चीत्कार सुनकर भगवान गरुड़ पे चढ़ के आ रहे थे तो गरुड़ को बोला, तुम कितना स्लो चलते हो, तुम्हारी गति कितनी मंद है, वहां पर मेरे भक्त के ऊपर पीड़ा है और तुम इतना स्लो स्लो चलोगी तो इतनी देर तक तो मेरे भक्त को पीड़ा चलेगी। गरुड़ को वहीं पर छोड़ा और भगवान अपनी गति से आगे बढ़ने लगे। मतलब भगवान उस करुणामयी पुकार से, जो हृदय से जब भक्त दुख में होता है, कोई कष्ट आता है, कोई संकट आता है भक्ति में, तो फिर जब भगवान को बुलाता है तब वो पुकार सुनकर भगवान रह नहीं सकते और भवतो दर्शनम यत् स्यात्। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि दुख के समय जो भगवान को पुकारना होता है, वो जो हृदय से निकली हुई पुकार होती है ना, वो रोज की आरती पूजा में नहीं होती है, है ना। रोजाना जो हम भगवान की सेवा कर रहे होते हैं, जो मंत्र जप कर रहे होते हैं, अभी हम एक ऐसी रूम में बैठे हुए हैं और अपनी 16 माला जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो इतना रूटीन वाइज हो जाता है क्योंकि हम उस समय कष्ट का अनुभव नहीं कर रहे होते, तो हृदय के अंदर पीड़ा नहीं होती है। कृष्ण से जो वियोग है, जो विप्रलंबा भाव जिसका दर्शन हमें महाप्रभु कराते हैं, वो उस समय हमें उतना ज्यादा फील नहीं हो रहा होता है, इसलिए हृदय से प्रार्थना भी नहीं निकलती है। इसीलिए तो महाप्रभु कहते हैं, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गदरुद्धया किरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तवनं ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, वो दिन कब आएगा जब आपका नाम ग्रहण करते हुए मेरे नेत्रों से अश्रु धाराएं बहेंगी? वो क्षण कब आएगा जब आपका नाम लूंगा तो गदगदित होकर मेरा कंठ रुद्ध हो जाएगा? और वो समय कब आएगा जब आपका नाम ग्रहण करते हुए मेरे सारे शरीर में रोमांच उठेगा? वास्तव में भक्तों, जब ऐसी स्थिति होती है, जब कृष्ण अगर नहीं आते तो एक एक क्षण युगायतम निमिक्षेण, एक एक क्षण जो है वो जब युग के समान लगता है। वो कब लगता है? जब हमारे ऊपर विपत्ति आ रही होती है और एक एक क्षण ऐसा लगता है कि कृष्ण अभी तक तुमने कृपा नहीं की है, कितना यहाँ पर कष्ट है, कितना दुख है, तो कष्ट के समय जो भक्त और भक्त ही जाता है, यहाँ पर ये प्रश्न उठता है, क्या कष्ट के समय भक्त को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए या फिर भगवान से क्या कर, भगवान से प्रार्थना का, अब देखो कोई भी कष्ट होता है, चाहे हमें भक्ति में, भक्त का सबसे बड़ा कष्ट क्या है यहाँ पर बता रही हो कुंती महारानी, हमें उसको समझना होगा। कुंती महारानी यहाँ पर भगवान से कष्ट नहीं मांग रही है, भगवान से यहाँ पर विपत्ति नहीं मांग रही है। विपत्ति के कारण क्योंकि भगवान का दर्शन हो रहा है। देखो यहाँ पर कुंती महारानी कह रही, विपत्त संतुत शाश्वत तत्र तत्र जगत को भवतो दर्शनम यत्सात। क्योंकि जीव के लिए, एक भक्त के लिए सबसे बड़ा संकट क्या है जानते हो? सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? कृष्ण से दूर रहना। और कृष्ण से दूर जब हम सुखी होते ना, तो कृष्ण का जो आनंद है ना, कृष्ण के नाम का, कृष्ण के सानिध्य का, वो नहीं होता है। तो लेकिन जब विपत्ति के समय कृष्ण बहुत ही तीव्रता से याद आते हैं और कृष्ण का नाम बहुत ही हृदय से निकल रहा होता है और साक्षात दर्शन हो रहा होता है, विपत्ति के हमारा अनुभव है, जब जब विपत्ति आती है और हम विपत्ति में भगवान का नाम लेते हैं और उस समय हमें ऐसा रियलाइज कराते कृष्ण कि मैं हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं बच्चे में तुम्हें दुखी होने नहीं दूंगा, मैं अवश्य संकट से तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो उस समय कृष्ण का सानिध्य भक्त जो है वो बहुत ही तीव्रता से भक्त महसूस करता है। और भगवान को कुंती महारानी कहती है कि जब विपत्ति नहीं होती है तो तुमसे दूर हो जाते हैं बहुत, और आपका दर्शन प्राप्त नहीं होता है, आपका सानिध्य रियलाइज नहीं होता है, और भक्त के लिए सबसे बड़ा संकट यही है, भक्त के लिए सबसे बड़ी विपत्ति यही है कि आपसे दूर हो। तो क्योंकि विपत्ति जो है वो आपका दर्शन कराने में सहायक है, इसलिए कुंती महारानी जो है वास्तव में क्या मांग रही है, भगवान के दर्शन मांग रही है। लेकिन क्योंकि विपत्ति के द्वारा हो रहे थे और अब वो सोच रही है, क्योंकि अब तो सब कुछ सही हो गया है, महाभारत के युद्ध में सारे शत्रु जो बार बार उनको विपत्तियों में डाल रहे थे उन सब का वध हो गया, अब तो निष्कंटक राज्य है उनका, कोई भी दुख नहीं, कोई संकट नहीं, पूरा राज्य युधिष्ठिर मेरे पुत्र को मिल गया है। अब हो सकता है कि इस राज और वैभव के सुख में वो हृदय के अंदर जो सदैव एक टीस रहती थी, एक विरह का दुख होता था, और हर समय तुम्हें दिल से पुकारते थे कि कृष्ण तुम आ जाओ, कृष्ण एक क्षण के लिए भी तुम दूर जाते थे तो हृदय धड़कता था कि पता नहीं कौन सी विपत्ति अभी आ जाएगी, पर कृष्ण चले गए हैं तो हृदय से हर समय, जब विपत्ति नहीं भी होती थी तो भी विपत्ति का डर होता था, जिसके कारण हम पाप को बहुत ही बहुत हृदय से याद करते थे, और अब क्योंकि डर ही खत्म हो गया विपत्ति का, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो प्रेम है ना वो कम हो जाए आपके प्रति, और इन भौतिक ऐश्वर्यों में आकर हम आपको हृदय में, मतलब इन भौतिक ऐश्वर्यों के कारण हम भूल जाएं। आगे बताएगी कुंती महारानी कि भौतिक ऐश्वर्य जो है वो भगवान से बहुत दूर कर देते हैं हमें, और अगर भगवान से दूर हो जाता है कोई भक्त तो उससे बड़ी विपत्ति उसके लिए कोई है नहीं। तो इसलिए विपत्ति, जो भौतिक विपत्तियां हैं उनको ही वरदान मांग मानकर कुंती महारानी मांग रही हैं कि जब जब विपत्ति आती थी तब तक तुम हमारे सामने आ जाते थे, भवतो दर्शनम यच्छात्, और उन विपत्ति के द्वारा हमें आपका दर्शन होता था। तो कुंती महारानी को भगवान कहते हैं कि ऐसा वरदान तो कभी किसी ने मांगा नहीं, विपदा संतुता शाश्वत, विपत्ति रहे और कंटिन्यूअस रहे, लेकिन क्यों है, यत्स्यात् पुनर्भव, यत्स्यात् पुनर्भवाद अदर्शनात्, यानी कि ये विपत्ति जब आती है तो भौतिक कष्ट दूर हो जाएंगे, क्यों, भवतो दर्शनम यत्स्यात्, आपका दर्शन हो जाएगा, और आपका दर्शन जहां पर हो गया फिर विपत्ति का तो प्रश्न ही उठता नहीं है। जहाँ कृष्ण है, सच्चित आनंद है, वहां पर तो केवल आनंद, जिस प्रकार सूर्य जहाँ पर होता है वहां पर कोसों तक कहीं अंधकार नहीं दिखता, उसी प्रकार जहाँ पर कृष्ण होता है वहां पर दूर दूर तक कहीं विपत्ति नहीं दिखती। तो भगवान को कुंती महारानी आज बता रही है कि कृष्ण, क्योंकि विपत्तियों के सहयोग से ही आपका दर्शन होता है, तो मैं चाहती हूँ कि विपत्ति होती रहे और आपका दर्शन होता रहे। तो कृष्ण बोलते हैं, बुआ जी आखिर मेरे दर्शन से लाभ क्या होगा। तो कुंती महारानी ने बहुत ही सुंदर इसका उत्तर दिया है, अपुनर्भव दर्शनात्, अपुनर् मतलब दोबारा नहीं होता है, भाव दर्शनात्, भाव का मतलब होता है बारंबार जन्म मृत्यु को देखना, बहुत ही मुख्य प्रार्थना है और बहुत ही बुद्धिमत्ता की प्रार्थना कुंती महारानी कर रही हैं कि एक बार आपका हृदय के साथ स्नेह हो जाए और आपका दर्शन हो जाए, आपके नाम, भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है, अंतर नहीं है, तो भगवान को कुंती महारानी कहती हैं आपका दर्शन हो जाता है तो पुनर्भव दर्शन नहीं होता है। मतलब भौतिक जगत में जो बारंबार जन्म मृत्यु का चक्कर है ना वो समाप्त हो जाता है, संसार का दुख होना, बारंबार दुख होना इस शरीर में, अभी देखो इस संसार में हम आते हैं, एक शरीर में जन्म लेते हैं, फिर बीमार होते हैं, बड़े बूढ़े हो जाते हैं और फिर मृत्यु हो जाती है, फिर ये शरीर के दुख, इसके साथ साथ कौन से होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, ये सारे दुख होते हैं, फिर उस शरीर के दुख समाप्त करते करते जीव चाहता ना दुख नहीं हो मुझे, तो अगर उसका स्मूथ लाइफ जाता रहे, उसके अंदर कोई दुख नहीं रहे, तो क्या होगा, उसको बुद्धि भी नहीं आएगी, वो भगवान की शरण में भी नहीं जाएगा। आजकल ऐसा ही होता है, तो ज्यादातर ऐसा ही होता है, दुखी लोग ही भगवान की शरण में जाते हैं। तो कुंती महारानी कितनी सुंदर प्रार्थना कर रही हैं कि एक शरीर में अगर हम लोग जी रहे हैं तो भले ही भौतिक दुख हो, आपत्तियां नहीं आ रही हैं, लेकिन इस संसार में रहना ही तो आपत्ति है। इस शरीर में रहे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये रोग हम लोगों ने भुगते, फिर ये समाप्त करके गए, कृष्ण भक्ति नहीं की, दूसरे शरीर में गए, वहां पर भी भूख प्यास बुढ़ापा रोग मृत्यु जन्म मरण ये सब, ठीक है। फिर दूसरा शरीर में गए, वहां पर भी जन्म मृत्यु रोना भूख प्यास बुढ़ापा ये रोग आदि दैविक आदि भौतिक ये सारी कष्ट वापिस से, ये तो पुनरावृत्ति होती जाती है ना, बार बार हो रहा है। तो जिस प्रकार समुद्र में लहरें असीम मात्रा में आ जाती हैं, सीमा ही नहीं है लहरों की, कोई काउंटलेस लहरें होती है ना, कोई काउंट तो नहीं कर सकता, उसी तरह से जब तक जीव इस संसार में है उसके ऊपर काउंटलेस काउंटलेस आपत्तियां आती रहती हैं। कोई उन आपत्तियों का, उन दुखों का कोई शम, इस संसार में रहना सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि ये दुख के लिए भगवान ने कहा है दुख कालयम अशाश्वतम। ये संसार कैसा है, इस संसार में जो भी आपको सुख मिलता है वो दुख से लिपटा हुआ है। इस संसार में सुख नाम की कोई वस्तु नहीं रखी भगवान ने, हमें तो ये जो सुख समझ रहे हैं हम जिसको, वो केवल और केवल दुखों के कम होने की स्थिति को समझ रहे। वास्तविक दुख तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। इस संसार में कोई ऐसा है जो जन्म का दुख नहीं भुगतेगा? जो भी इस संसार में आया उसने जन्म लेने का दुख भोगा है, जो भी इस संसार में आया है उसने भूख देखी है, जो भी इस संसार में आया है उसने रोग देखा है, जो भी इस संसार में आया उसने बुढ़ापा देखा है, और सबसे बड़ा कष्ट देखा मृत्यु। देखा नहीं तो देखना पड़ेगा, कितने दफा तो देख कर आए फिर भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़े है कि वो वाला दुख आया नहीं था। मतलब कुंती महारानी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हमें सिखा रही हैं कि इस संसार में जब तक हम रहेंगे तब तक दुखों को भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसा कोई कार्य जिसके कारण भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, उसमें यदि कोई कष्ट हो रहा है तो उस कष्ट को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वास्तविक दुख क्या है, भगवान से दूर रहना, यही सबसे बड़ा दुख है। और जब भगवान साथ होते हैं तो विपत्तियां विपत्तियां नहीं लगती। जब हम भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है तो फिर विपत्तियों में भी एक आनंद, एक अंदर से संतुष्टि होती है कि कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे। तो जिन विपत्तियों के कारण भगवान का दर्शन हो रहा है तो भगवान को कुंती महारानी कह रही है कि मैं वो कारण जान गई हूँ कि विपत्ति ही वो कारण है जिसके कारण मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए कुंती महारानी कह रही है विपदः संततः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। मैं चाहती हूँ कि वो सारी विपत्तियां बारंबार मेरे पास आए, क्योंकि भवतः दर्शनत यस्यात्, उन्हीं विपत्तियों के द्वारा ही तो मुझे आपका दर्शन हो रहा है। और श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है, सेकेंड पैरा में जो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो वास्तव में श्रीमद् भागवतम के 10.14.58 श्लोक का श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है। यहाँ पर श्लोक क्या है, समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवं बुद्धिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम। यानी कि जो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, वो चरण कमल जो है वो एक ऐसी नाव के समान है, महत् पदम पुण्य यशो मुरारी, वो एक इतनी सुंदर नाव है कि उसमें यदि बैठ कर हम इस भाव सागर, यहाँ पर भवाम बुद्धिर वत्स पदम परम पदम, के जो पूरा भाव सागर है, जो दुखों का समुद्र है, यदि आपको भगवान के सानिध्य की प्राप्ति हो जाती है तो वो भाव सागर कैसा होता है, वत्स पदम, गौखुर जो होता है उसमें समाये हुए जल के समान होता है। और जितनी सरलता से हम गौखुर के निशान के अंदर समाये हुए जल को लांग देते हैं, उतनी सरलता से हम इस भव सागर को लांग देते हैं अगर हम भगवान के श्री चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो भगवत धाम रहने के अधिकारी हैं। पदम 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 या त्रिपताम नतेशम, कि वो ऐसी जगह पर रहने के अधिकारी नहीं है, उन ऐसे स्थान पर कोई प्रयोजन नहीं रहता है जहाँ पर पग पग पर संकरण, यानी ऐसे ऐसे व्यक्ति जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेते हैं, उन्हें इस भाव सागर वाली दुनिया में, इस दुखों वाली दुनिया में फिर नहीं रहने दिया जाता है। तो यदि कोई संकट ऐसा है जिसके कारण आपको भगवान का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तो उसको तो स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उस संकट के द्वारा भगवान का सानिध्य मिलेगा और भगवान के द्वारा वो जगह की प्राप्ति होगी जहाँ पर संकट ही नहीं होता। और शिला प्रभुपाल जी ने अंतिम तात्पर्य के पोषण में बहुत ही सुंदर बताया कि संसार में विपत्तियां तो आती रहती हैं, लेकिन ये सब विपत्तियां जो हैं वो मिथ्या समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शरीर ही मिथ्या है, एक दिन समाप्त हो जाएगा, ये तो जड़ है। और ये जितनी भी विपत्तियां हैं वो यदि किसी को कष्ट दे रही हैं तो किसको दे रही हैं? हमारे शरीर को दे रही हैं ना। तो हमें आत्म साक्षात्कार में प्रगति करनी चाहिए, और जब जीव को ये ज्ञान हो जाएगा और इस बात को रियलाइज करने लगेगा कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो भगवान का अंश हूँ, तो ये भौतिक कष्ट मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तो ये सब तो ऐसा श्री प्रभुपाद ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि यदि आप सो रहे हो और आपको सोने में कोई शेर आके खा रहा है, बहुत बड़ी विपत्ति है ना ये कि कोई शेर आपको खा रहा है और आप अपने आप को बिल्कुल निसहाय महसूस करते हो, लेकिन अगर वो सपना है तो उसमें आपका क्या बिगड़ जाएगा, आपको तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो जीवन है हमारा वो वास्तविक में हमारा सपना है, क्योंकि हमारा वास्तविक जो देह है, वास्तविक जो स्वरूप है, वो तो सुप्त अवस्था में गौलोक वृंदावन धाम में है, और वहां पर बैठकर हम सपना देख रहे हैं। और इस सपने में हमें ऐसा कार्य करना है कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को दोबारा से प्राप्त करें। तो ये कितना सुंदर है कि इस सपने में यदि हमें कितना भी कष्ट मिल रहा है तो भी हमारी वास्तविक स्वरूप को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। इसलिए यदि कोई भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है, अगर भगवान किसी भी तरीके से भगवान के अंदर, भगवान के चरणों में हमारी मति बहुत तीव्रता से लग रही है, तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, वो हमारा लाभ ही लाभ है। और इसको करने के लिए आज हमें विपत्ति मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, नवदा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भी भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में सदा एक अग्रिम पग है। कि अगर हम नवदा भक्ति में, और नवदा भक्ति शुरू होती कहाँ से? श्रवण से। कि अगर हम इन महान भक्तों की प्रार्थनाओं को यदि श्रवण भी करते ना, तो भी भगवान के प्रति हमारे प्रेम में तीव्रता आने लगती है। कुंती महारानी के कष्टों को अभी इससे पहले हमने नारद मुनि के विषय में पढ़ा। तो ये भागवत ऐसा ग्रहण है, ऐसा ग्रंथ है कि खाली श्रवण करने से सद्यो रिद्य वरुद्य देत कृति भी शुश्रूषु भिस्त क्षणान, उसी क्षण जो है वो भगवान हृदय के अंदर आसीन हो जाते हैं। आज आपको भगवान को अपने हृदय में बुलाने के लिए कष्टों को मांगने की आवश्यकता नहीं है। केवल भागवतम में जिन जिन भक्तों की भगवान ने इतनी सुंदर रीति से रक्षा की है, केवल उनको भी अगर हम अच्छे तरीके से श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम सुप्त अवस्था में है वो जागृत हो जाता है। और कृष्ण प्रेम ऐसा कह रहे थे राधा गोविंद महाराज कि अगर कोई शुद्ध डिवोटी के द्वारा आप भागवतम को श्रवण करने का आपको अवसर प्राप्त होगा ना, तो कृष्ण प्रेम उछल कर आपके हृदय को पूरा प्रेममयी कर देगा और आप कृष्ण के प्रति इतना आसक्त हो जाओगे कि भौतिक किसी वस्तु से आपको कोई कष्ट ही नहीं होगा। ऐसा लगेगा संसार में कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त, आनंद के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और आगे श्लोक नंबर 26 में कुंती महारानी अत्यंत ही सुंदर बात कह रही हैं भगवान को। ये वास्तविक फैक्ट है। कुंती महारानी कहती हैं, जन्मैश्वर्य श्रुत श्री भीदमान मद पुमान नैवार्हत्य विधातुं वै त्वामकिंचन गोचरन् जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिर् एदमान मद पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् नैव सॉरी जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिर् एदमान मद पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् जन्मैश्वर्यश्रुत श्रीभिरेदमान मद पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् शब्दात् जन अर्थात जन ऐश्वर्य अर्थात शान शौकत जो ऐश्वर्य होता है, श्रुता अर्थात शिक्षा, श्रीभिर अर्थात सुंदरता, एधमान यानी लगातार वृद्धि होती है, मदह पुमान अत्यंत ही सुंदर यहाँ पर कुंती महारानी बता रही। जैसे पिछले श्लोक में कुंती महारानी ने क्या कहा है, विपद संतुत शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे कृष्ण, मैं चाहती हूँ कि वो सारी विपत्तियां कंटिन्यू शाश्वत रूप से मेरे जीवन में रहे। तो भवतो दर्शनम यच्छात् अपुनर्भव दर्शनम, क्योंकि उन विपत्तियों के द्वारा तो आपका दर्शन होता है, और जब आपका दर्शन हो जाता है एक बार, तो पुनः कभी भी भव दर्शन नहीं होता, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कृष्ण पूछ सकते हैं कि माता बुआ जी, अब तो संपत्ति मिल गई है, राज मिल गया है, तो अब तो विपत्ति आपसे बहुत दूर चली गई है, तो अच्छा है ना, आपको तो और भी अच्छा ये सोचना चाहिए कि आप अभी सुखी हो, अभी भी मुझे ना आप भगवान की भक्ति करो, आप भी मुझे याद करो, लेकिन विपत्ति क्यों मांग रहे, विपत्ति नहीं मांगो। तो इस बात को वो कह रही हैं, अभी भगवान को बता रही हैं। देखो बहुत ही सुंदर बात है यहाँ पर, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवीर, ये चार चीजों के बारे में बता रही है। जन्म का मतलब होता है उच्च कुल, यानी कि अच्छा यदि कुल में आपको जन मिल जाता है, और ऐश्वर्य ऐश्वर्य मिल जाता है, बहुत ज्यादा आपको बड़ा पद मिल जाता है। एक तो आपको अच्छे कुल में जन्म मिल गया, और उसके बाद बहुत बड़ा आपको पद मिल गया, बहुत बड़ी वैल्यू मिल गई, इतना कोई भी मतलब कहीं के प्रेसिडेंट बन गए या कुछ इस तरह से पद मिल गया, और श्रुति अर्थात आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान आ गया, बहुत ज्यादा ज्ञान, आपने IIT कर लिया, CA कर लिया, या फिर ना उससे बड़ी 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 क्वालिफिकेशन, आपने ज्ञान में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, और आगे जन ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर, श्री मतलब सुंदरता, आपको सुंदर शरीर मिल गया। तो भगवान को कुंती महारानी बता रही है कि यदि ऐसा हो जाता है, जन ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर एध मान मध पुमान, तो इनके द्वारा यानी कि उच्च कुल में जन्म लेना, पद बड़ा प्राप्त करना, विद्या प्राप्त करना और सुंदर शरीर प्राप्त करना, इन कारणों से जीव का मद इतना बढ़ जाता है, तो वो इतना ज्यादा मतलब घमंडी हो जाता है, उनके अंदर इतना ज्यादा घमंड आ जाता है, इतना प्राउड हो जाता है कि नैवार हत्य भी धातुम वै। अभिधातुम का मतलब जानते हो क्या है, मतलब वो नाम लेते ना, किसी को नाम लेकर बुलाते हैं। तो भगवान को कुंती महारानी कहती हैं कि अगर किसी को एक बार मद हो जाता है, किस चीज का, जन का, ऐश्वर्य का, ज्ञान का, सुंदरता का, किसी को एक बार घमंड हो जाता है, जीव को जब ये सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, तो इतना घमंडी हो जाता है वो, तो नैवा वो कभी भी आहत्य यानी प्राप्त होता है अभिधातुम, वो आपका नाम लेना भी भूल जाता है, वो आपको क्या प्रेम करेगा, वो जो भगवान का नाम भी नहीं लेगा तो क्या भक्ति करेगा। तो उच्च कुल में जन्म लेना, ऊपर से बड़ा पद प्राप्त होना, उससे बहुत ज्यादा प्राउड ही हो जाता है एक इंसान इतना ज्यादा कि, और ये मद जो होता है ना, ये बहुत बड़ा रोग होता है, सबसे बड़ा रोग है कि अपने को इतना अहंकार हो जाना कि मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतने बड़े कुल में जन्म लिया है, मेरे अंदर इतना ज्ञान है। तो जैसे बीमार व्यक्ति की हालत होती है, वो होश में नहीं रहता, किसी को पहचानता नहीं है। उसी प्रकार जब मनुष्य जो है उसको कोई मद हो जाता है, बहुत ज्यादा घमंड हो जाता है जन का, ऐश्वर्य का, ज्ञान का, वैभव का, तो वो तो फिर किसी को पहचानता ही नहीं है। फिर वो किसी से बात भी करना, ये गरीब लोग अभी देखो ज्यादातर क्या होते हैं, भक्त लोग भी गरीब होते हैं, फिर वो धिक्कारना शुरू कर देता है। अगर कोई भक्त तो उनके घर पे आता भी है ना, अमीर लोग के घर पे, भले ही वो दान मांगने के लिए नहीं आया है, अगर कोई काम से भी भक्त हरे कृष्णा करेगा ना, तो उसके मन में ये तो पैसे लेने आया होगा मेरे से। यानी कि वो भक्त की बात, अब जब तक आप किसी भक्त का सानिध्य नहीं करते, भूल जाओ कि आप भक्ति कर सकते हो। आप भक्ति में उन्नति तब तक नहीं कर सकते जब तक आप भक्तों का संग नहीं करोगे। तो जो अमीर लोग होंगे ना, जो जिनके पास ज्यादा ज्ञान होगा, जिनके पास ज्यादा धन होगा, जिनके पास ज्यादा सुंदरता होगी, जिनके पास ज्यादा ऐश्वर्य होगा, वो क्या करेंगे, वो ऐसे ही लोगों का सानिध्य करेंगे ना। भक्तों का तो सानिध्य करेंगे ही नहीं। उनको भागवत कथा में अगर किसी को कहा जाए कि यहाँ पर भागवत कथा रखी गई है, तो जो अमीर अमीर लोग होंगे ना, वो आने से पहले सोचेंगे कि मैं कैसे उन गरीब लोगों के साथ फर्श पर बैठूंगा। जो ज्ञानी होगा ना, जिसके पास अभी कोई बड़ा, जिसने डिग्री हासिल की होगी, बहुत ज्यादा एजुकेशन, जिसके बोलेगी ये तो सारे गवार लड़के होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पता नहीं कौन होते हैं, मलेच होते हैं, क्या होते हैं, इनके साथ मैं बैठूंगा तो मेरा स्टैंडर्ड खराब होगा, है ना। वो ज्ञानी होगा या जो ज्यादा भक्त, ज्यादा वो होगा ना धनवान होगा, वो उसको आप कभी भी भागवत कथा के पंडाल में नहीं देखोगे। उनको ऐसा लगता है, ज्यादातर जो अमीर लोग होते हैं, अब देखो एक्सेप्शनल केस जो होते हैं ना, वो अलग होते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको देखेंगे भागवत कथा में, या फिर अभी भी देखो कितने सारे लोग के पास ना ये होगी सुविधा कि हम घर पे बैठे भी भागवतम सुन सकते हैं। लेकिन जो जिनके पास धन होता है ना, वो अपने आप को इतना ज्यादा बिजी कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि कितने बेवकूफ हैं, वो एक एक घंटे तक भागवत कथा सुनते कैसे हैं। जो सुन रहे होते हैं खुद तो नहीं सुनेंगे, उनके लिए भी ये कमेंट पास करेंगे कि एक एक घंटे तक उनको कोई दूसरा काम नहीं है क्या, एक घंटे तक भागवत, यानी कि वो जो काम कर रहे हैं अब उनके धन के द्वारा या उनके एजुकेशन के द्वारा या उनकी सुंदरता के कारण, उनकी भी तो अपनी मसरूफियात है ना, उनको वो सारी मसरूफियात बहुत ही एक्सीलेंट लगती है। यानी कि कोई धनवान होगा, उनकी अलग बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, ऑफिसर्स के साथ मीटिंग्स रखेंगे, या फिर घूमने फिरने के लिए जाएंगे, पिकनिक्स पर जाएंगे, और जो भी कर रहे होंगे, लेकिन वो क्या सोचेंगे, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, जमीन पर कैसे बैठूंगा। पढ़ा लिखा आदमी क्या सोचेगा, मैं इन जाहिलों के बीच में कैसे बैठूंगा, इनके बीच में बैठने से मेरी हानि होगी, मेरा स्टैंडर्ड खराब होगा। लेकिन वही अमीर लोग, वही वो धनवान और वही ज्ञानवान लोग हैं, शराबियों के बीच में बैठेंगे तो उनका यश बढ़ेगा, है ना। शराबियों के बीच में बैठते हुए या ऐसे लफंगों के बीच में बैठते हुए, जो बात करना जिनको नहीं आता है, जिनके अंदर कोई तहजीब नहीं है, उनके साथ बैठेंगे तो उनको तब उनकी हानि नहीं होगी। लेकिन भक्तों के साथ बैठेंगे तो उनको ऐसा लगता है कि भक्त के साथ यदि मैं बैठूंगा फिर तो, है ना, लोग क्या कहेंगे, मैं शराब पीते, उधर तुम बियर बार में जाते हो आधी आधी रात में, अपनी बहन के साथ जाते हो, अपनी मां के साथ जाते हो, वहां पर डांस करते हो, उल्टे सीधे वाहियात हरकतें करते हैं, उसमें उनकी हानि नहीं होती है, उसमें उनका यश खराब नहीं होता, बल्कि उससे तो मान बढ़ रहा है भाई। लेकिन अगर भागवत कथा में आकर बैठेंगे या शास्त्र श्रवण, उनको देखो कोई अगर कोई माला भी कर रहा होगा ना, कोई अगर हमारे पास कोई मतलब मीडियम टाइप के लोग होंगे ना, जप कर रहे होंगे या भक्ति कर रहे, तो उनके घर में कोई बड़ा आदमी आएगा ना, बहुत ज्यादा धनवान होगा या बहुत ज्यादा ज्ञानवान आएगा, तो फिर माला भी साइड में रख देंगे ऐसे छुपा के कि क्या सोचेगा, है ना। और अगर कोई धनवान व्यक्ति कभी किसी के कहने में आकर भगवान को प्रणाम कर रहा है या भक्ति कर रहा है, तो फिर वो भी अगर उससे बड़ा कोई आदमी आएगा तो सोचेगा कि ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, कि ये तो अभी भगत बन गया है, तो फिर वो भक्ति भक्ति बन के बंद करके पर्दा बंद करके उसके साथ बैठ जाएगा अपनी उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए। यानी कि यहाँ पर कुंती महारानी वास्तविक फैक्ट बता रही है, बहुत ही सुंदर भगवान को कह रही है, त्वाम किंचन गोचरम, त्वाम यानी आपको किंचन गोचरम यानी जो भौतिक दृष्टि से दरिद्र मनुष्य होते हैं ना उनको आप बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाते हो। गरीबों को आप बहुत ही आसानी से, अमीर लोग होंगे वो सदैव अपने स्टेटस के बारे में सोचते होंगे, अपने इतना बड़ा ऑफिसर हूँ मैं, इतना सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं फालतू लोग, ये तो भागवत कथा या भगवान की भक्ति या जप करना ये तो फालतू लोग का काम है, तो मैं ये फालतू काम नहीं करूँगा, मेरे और भी इम्पोर्टेंट काम है, इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, मैं वो बैठ के अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग बैठ के डील करूँ या बैठ के यहाँ पर तुम्हारा ये फिजूल का काम करूँ भागवत कथा सुनने के लिए। तो उनको क्या लगता है कि कृष्ण भक्ति बिल्कुल जो फिजूल लोग होते हैं जिनको कोई काम धंधा नहीं होता उनका काम है, तो वही लोग सुन रहे हैं आज, देखते हैं हम सब सुन रहे हैं ना, और कोई काम नहीं ना उन लोग को इसलिए। और साथ साथ कुंती महारायण कहते हैं त्वाम किंचन गोचरम के जो भौतिक दृष्टि से बहुत दरिद्र होते हैं उन्हीं को आप प्राप्त होते हो। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर वृंदावन की यात्रा के लिए अगर ना एक यात्रा निकलती है, जत्था निकलता है, तो 99% उसमें कौन होंगे? गरीब लोग होंगे। गरीब लोग दिल करेगा उनका कि हम वृंदावन कैसे भी करके जनरल डिब्बे में बैठेंगे, जैसे तैसे करके धन एकत्रित करेंगे और बोलेंगे कि भाई हम लोग जाना चाहते हैं वृंदावन की यात्रा करने के लिए, वो बैठेंगे, ठीक है। और जो अमीर लोग हैं, जिनको ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा धन है, उनको यदि एरोप्लेन का टिकट भी दिया जाए ना तो भी वो नहीं जाएंगे। एरोप्लेन में आप जाओ, आप है ना वृंदावन यात्रा करके आओ, फिर भी उनको बोलेंगे नहीं भाई हमारे पास समय नहीं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है ना कि जो धनवान होते हैं वो भगवान से कितना दूर अपने आप को रखते हैं और जो गरीब होते हैं वो कितना भगवान के करीब जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुंती महारानी बता रही है कि भक्ति का एक कारण गरीबी है, गरीबी के कारण त्वाम किंचन गोचरम की गरीब होने से हमें भगवान बहुत सरलता से प्राप्त होते हैं। अनुवाद, कुंती महारानी कह रही है प्रभु आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल ऐश्वर्य उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हैं, बढ़ने के लिए प्रयास में लगे रहते हैं, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाते। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भौतिक दृष्टि से उन्नत होने का अर्थ है उच्च कुल में जन्म लेना और प्रभुत्व संपत्ति शिक्षा तथा आकर्षण सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकतावादी लोग इन भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के पीछे मदांध हो रहते हैं और यही भौतिक सभ्यता की उन्नति कहलाती है। भौतिक सभ्यता में उन्नति क्या है? आपके पास जितना ज्यादा धन है, जितना ज्यादा ऐश्वर्य है, जितना ज्यादा सुंदरता है, उसके साथ साथ जितना ज्यादा आपके अंदर घमंड है, वही सभ्यता की उन्नति है कि इसके अंदर उतना, इसका लाइफस्टाइल कितना उन्नत है। लेकिन इन समस्त भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित होता है और मदांध हो जाता है। अतएव भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग भगवान का पवित्र नाम लेने में तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम रहते हैं। यहाँ पर साफ साफ कुंती महारानी ने कहा है नैवार हत्य भी धातुम कि आपको वो नाम भी आपका नहीं लेना चाहते हैं। यानी आज हम सब जो भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है उसका उच्चारण करने के लिए भी योग्यता जो है वो अकिंचन भाव है। तो वो अकिंचन भाव के द्वारा अगर हम ये भाव नहीं है, गर्व है, अगर अपने मध्य का प्राउड है भौतिक ऐश्वर्यों का, तो कुंती महारानी साफ कह रहे हैं नैवार हत्य भी धातु में कि वो तो जो उच्च कुल में जन्म लेना तो मनुष्य को भक्ति में उन्नति करने में बाधा प्राप्त करता है, क्योंकि उच्च कुल में यदि उत्पन्न हो गए, यश मिल गया, सौंदर्य मिल गया, ज्ञान मिल गया, तो इतना मद्ध हो जाता है कि जीव भगवान के पवित्र नाम का जप भी नहीं कर सकता है। श्री प्रभुपाद जी इसी बात को बता रहे हैं कि शास्त्रों में कहा गया कि भगवान का एक बार भी पवित्र नाम लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाते हैं जितने कि वह कर भी नहीं सकते। ऐसा बताया गया है बृहद विष्णु पुराण में। नाम नो ही आवती शक्ति पाप नर हरणी हरी तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। अर्थात भगवान के मात्र एक नाम का उच्चारण करने से एक पापी व्यक्ति उतने पापों से बच सकता है जितने पाप वह कर भी नहीं सकता। और देखा जाए तो हमारा एक एक क्षण अपराध में गुजर रहा है, लेकिन भगवान का पवित्र नाम, भगवान का पावन नाम लेने से इतनी शक्ति है कि वो हम अगर उनका नाम का जप करते हैं तो हमारे सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी अतियुक्ति नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अतियुक्ति का क्या मतलब है जानते हो, कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा थोड़ी है, भगवान के नाम के अंदर इतना पावर है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता। भगवान के अंदर जितनी शक्ति है वो सारी की सारी भगवान ने अपने नाम में समर्पित कर दी है, लेकिन क्योंकि उन जो मध्य में इतने नशे में चूर होते हैं वो भगवान के पवित्र नाम का जप करने का भी विचार नहीं करते। नैवार हत्य विधा तुम, वो भगवान को संबोधित करना भी नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सचमुच भगवान के पवित्र नाम लेने से सचमुच भगवान के पवित्र नाम ने ऐसी प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणता चाहिए, यह भाव की गुणता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम भाव विभोर होकर लेता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई समृद्ध व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं हो सकती। भौतिकता के मद में चूर रहने वाला व्यक्ति यदा कदा भगवान का पवित्र नाम जप सकता है, लेकिन वह गुणवत्ता पूर्वक नाम लेने में अक्षम है। अभी देखो, अगर किसी कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है और कोई व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता है, मतलब उसके अंदर कोई उसका आकर्षण नहीं होता है, तो जब हम उसका नाम लेते ना तो नाम लेने से ही हमें पता चल जाता है, कोई बुलाता है ना, खाली कोई बुलाता भी है ना। जैसे हम कृष्ण को बुलाते हैं तो अगर भक्त होते हैं तो फिर नाम बोलते हैं ना भगवान का, तो खुद ही ऐसा लग रहा होता है कि भगवान के उस नाम के साथ साथ हमारे हृदय के अंदर जो भगवान के लिए प्रेम है ना वो भी साथ में निकल रहा होता है। बोलते हैं प्रसाद अर्पण कर रहे होते भक्त, फिर कैसे बोलते हैं कृष्ण आपके लिए बनाया है, आप कृपा करके इसको स्वीकार करो, भले मेरे अंदर वो क्वालिटीज नहीं है लेकिन जितना प्रेम है वो सारा का सारा डाला है इसके अंदर, आप इसे स्वीकार। मतलब वो भाव भी तो साथ में हम दे रहे होते हैं ना भगवान को जितना भी अभी, लेकिन जिसके जिसका भगवान के प्रति स्नेह नहीं है वो यदि नाम पुकारता भी है ना तो उसके अंदर वो गुण नहीं होते, वो क्वालिटीज नहीं होते जिसको सुनने के लिए भगवान पिघले। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी वस्तु की आवश्यकता है, भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयस्यते। अब भले तुम जो भी देते हो उसका तो कोई इश्यू ही नहीं रखा ना, लेकिन भक्ति के साथ देना है, तदा हम भक्ति प्रहतम, मैं उस भक्ति को स्वीकार करूंगा। भक्ति के साथ, जो प्रेम के साथ तुमने मुझे वो कोई कुछ भी दिया है, तुम मेरे साथ बैठे हो, मेरा नाम लिया है, मुझे पानी का एक गिलास, एक पत्ता तुलसी का दे दिया, तो भी मैं उसको स्वीकार करूंगा। लेकिन यदि प्रेम नहीं है तुम्हारा, तो फिर मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। वास्तव में तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ नहीं है, जो कुछ दिया है मैंने दिया है, और उसी में से यदि कुछ प्रेम से मुझे वापस से रिटर्न कर रहे हो, तो मैं स्वीकार कर देता हूँ। और मैं कहता हूँ मेरे बच्चे ने दिया। जैसे एक बच्चे को अगर उसके पिताजी टॉफीज की पूरी थैली लेकर आए उसके लिए, और उसमें से वो निकाल के बोलता है, पापा ये एक मैं आपको दे रहा हूँ, आप खाओ, तो उस समय पिता को कितनी खुशी होती है। हालांकि उसको पता होता है कि ये पूरा चॉकलेट्स का पैकेट जो है वो मैंने उसको दिया है, लेकिन बच्चे ने प्रेम से उसको दिया ना, तो पापा ये नहीं सोचते हैं कि ये मैंने तो तुमको दिया है, तुम मुझे देकर कौन सी बड़े कारनामे सर अंजाम दे रहे हो, लेकिन वो सोचते हैं मेरा बच्चा कितना प्यारा है, पापा को खिला रहे पहले तो कितना उसको अच्छा लगता है। तो उसी तरह से भगवान ने जो कुछ भी हमारे पास से दिया है, लेकिन जब हम प्रेम से उसको देते तो प्रेम को स्वीकार करते। अगर उस बाप को चॉकलेट खाना होता तो एक पैकेट अपने लिए दूसरा लेकर आ जाता, लेकिन उसको चॉकलेट की नहीं, अपने बच्चे की प्रेम की आवश्यकता होती। उसी तरह से भगवान को भी हमारी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है सिवाय प्रेम के। और श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर सिद्धांत यहाँ पर जो कुंती महारानी ने बताया उसको यहाँ पर अच्छे से बताया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अतीव भौतिक उन्नति के चार सिद्धांत, यानी उच्च कुल में जन्म, संपत्ति, उच्च शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य। ये देखो भौतिक जगत में सब लोग इन्हीं चार चीजों को प्राप्त करने के लिए ही पूरा स्ट्रगल करते हैं। उच्च कुल में जन्म, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अच्छे खानदान में मेरा जन्म होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद संपत्ति होनी चाहिए, मेरे पास बड़ा पद होना चाहिए, और कोई ना कोई मेरा एक बड़ा सा एक मुकाम होना चाहिए संसार में, मेरा एक स्टेटस होना चाहिए। और आगे उच्च शिक्षा, बहुत ज्यादा मुझे एजुकेशन प्राप्त होनी चाहिए। एजुकेशन के लिए कितना करते हैं, बहुत हाईएस्ट एजुकेशन मेरी होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा जो है ना आकर्षण, आकर्षक सौंदर्य, ऐसा मेरा स्वरूप होना चाहिए, मैं ऐसा दिखूं कि हर कोई मेरी ओर आकर्षित हो। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक उन्नति के जो ये चार सिद्धांत हैं, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने के लिए मानो अयोग्यताएं हैं। ये सब आपके पास आ जाती हैं तो फिर इतना गुरूर हो जाता है, इतना घमंड मध्य के भगवान ने कहा, ये सॉरी कुंती महारानी के ये शब्द हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुता शीभे ईधमान मद पुमान, ये मनुष्य को मध्य में अंधा कर देते हैं। तो यहाँ पर आगे कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी, शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य गुण है। जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का बाह्य गुण है, अभी समझ में आ रहा है कि वास्तव में हम शुद्ध आत्मा हैं, और ये जो भौतिक शरीर, अभी जितनी भी वस्तुएं बता रहे हैं, उच्च कुल में जन्म लेना, शिक्षा प्राप्त करना, आकर्षक सौंदर्य, पद प्राप्त करना, ये भौतिक आवरण यानी शरीर से रिलेटेड है। ये शरीर से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं वो बाह्य गुण है ना। जैसे जिस प्रकार ज्वर जो है वो रुग्ण शरीर का बाह्य गुण है, वास्तव में शरीर स्वस्थ है लेकिन जब उसको बुखार हो जाता है तो उसका बाह्य गुण है। अब करना क्या होता है, सामान्य विधि यह है कि ज्वर की मात्रा कम की जाए, है ना, ऐसा कोई काम किया जाए कि जिससे आपका बुखार कम हो जाए, ना कि बुरे उपचार के द्वारा उसे बढ़ाया जाए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे आपका बुखार और भी बढ़े। तो आगे कहते, कभी कभी देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति निर्धन हो जाता है। अब देखो भौतिक जितने भी ये बुखार है ना, ये सारे बुखार इस तरह ज्वर की मिसाल दी है श्रील प्रभुपाद जी ने, कि बुखार जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप वीक होते जाओगे। आध्यात्मिक दृष्टि में जितनी जितनी भौतिक आपको उन्नति प्राप्त हो जाएगी, जैसे भी जिस जिस क्षेत्र में, उसमें आप आध्यात्मिक उन्नति में जो है वो और भी ज्यादा कम होते जाओगे। और इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको ये मनुष्य जन्म बहुत ही कम समय के लिए मिला है और उसमें यदि आपने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति नहीं की तो आपके सारे आगे के कुंती महारानी ने कितना बता दिया है अपुनर्भव दर्शनम कि इस संसार में यदि तुमको भौतिक दृष्टि से कितनी संपत्ति प्राप्त हो भी जाएगी, इसी संसार में मिलेगी ना, इसी जन्म में मिलेगी, आगे जन्म की क्या गारंटी है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं भक्ति नहीं करोगे तो अगले जन्म में अच्छी जगह पे जन्म भी नहीं दूंगा। भगवान ने कहा भगवत गीता में 6 चैप्टर में, श्रीमान शुचि मतांगे योगे भ्रष्टो भी जायते। अगर अमीर घर में पैदा होना है या फिर संपन्नता प्राप्त करनी है ना संसार में, तो भी भक्ति करो, भक्ति अगर कम्प्लीट नहीं हुई तो मिलेगा तुमको ये। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि अगर हम आध्यात्मिक जीवन में तरक्की नहीं करते, केवल भौतिक जीवन में ही तरक्की करते हैं, तो फिर ये हमारे लिए सदैव हानिकारक होगा। और श्रील प्रभुपाद जी आगे क्या बता रहे हैं, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत निर्गण हो जाते हैं। भगवान ने कहा है भागवतम में, जानते हो क्या, यस्या हम अनुग्रहामी हरित्ते हरिष्ये तद धनम श्रेय, जिस पर मैं बहुत ज्यादा अनुग्रह करता हूँ उसका धन और उसका श्रेय मैं छीन लेता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी बोलते इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उल्टे यह निर्धनता शुभ चिन्ह है। इस दुखी नहीं होना चाहिए, यदि कोई भक्त निर्धन हो जाता है तो ये शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार के शरीर का ताप घटना शुभ है, जीवन का उद्देश्य, अब देखो जैसे अगर बुखार कम होता है तो अच्छा है ना, उसी तरह से ये सारे भौतिक वस्तुओं को बुखार से कहा कि जिस तरह शरीर का ताप घटता है तो अच्छा चिन्ह है, उसी तरह से भौतिक वस्तुओं से जितना आप दूर रहो उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इस तरह से आप आध्यात्मिक उन्नति करोगे। जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मत को घटाना होना चाहिए जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन उद्देश्य के विषय में अधिकाधिक मोहग्रस्त हो जाता है। बहुत ही सुंदर बात है कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, भौतिक मत को घटाना, क्योंकि इस भौतिक मत के कारण क्या होता है, अपने वास्तविक जीवन के उद्देश्य को मनुष्य जो है वो भूल रहा है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। अगर इनके पास इतना ज्यादा धन होता है, इतना ज्यादा सुंदरता होती है, पद होते हैं बड़े बड़े, तो वो क्या होता है, भगवत धाम जाने के लिए अनुपयुक्त होते हैं। नीति शास्त्र कहता है, मैं यहाँ पर अपनी कथा को विराम दूंगी, एक सुंदर शास्त्र की मुझे बात आई है याद, उसमें क्या कहते हैं कि लक्ष्मी समुद्र से निकली है। अब आप जानते हो जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वहां से पहले विष निकला और उसके बाद क्या निकला, लक्ष्मी निकली। तो लक्ष्मी क्या है, विष की बहन है। अब जो बहन भाई में जो गुण होते हैं ना, वैसे ही बहन के अंदर भी गुण होते हैं, क्योंकि माता पिता सेम होते हैं। तो जैसे विष खाएंगे तो क्या होगा, अंग टेढ़े हो जाएंगे, मनुष्य जीव जो है वो मर जाएगा, ऐसे उल्टा सीधा हो जाएगा। अब क्योंकि लक्ष्मी भी विष की बहन है तो वैसे ही लक्ष्मी जब आती है तो वो मारती नहीं है, भले जीवित तो रखती है परंतु जरूर अंग टेढ़ा कर देती है, अंधा कर देती है, बहरा कर देती है। जैसे आज हम देखते हैं धनवान व्यक्ति किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, अगर उसको हम भगवान की भक्ति के विषय में बताएंगे तो बोलेंगे इतने बड़े बड़े लेक्चर्स मुझे नहीं समझ में आते, मुझे नहीं दिया करो। वास्तव में कुंती महारानी 100% सत्य बोल रही हैं कि ये जो भौतिक जितनी भी संपन्नता है, जितना जितना आप उसमें आगे बढ़ते हो उतना उतना आप भगवान से दूर हो। तो कवि क्या कहते हैं पता है, जानते हो कि वो तो विष की बहन है, जान से नहीं मारा वही बड़ी दया है उसकी, अंडा बहरा करके छोड़ दिया तो कोई बड़ा नहीं, कोई ज्यादा नहीं किया उसने। तो आप इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत बहुत जो धनी लोग होते हैं, जिनके पास बहुत बहुत धन ऐश्वर्य होता है, जिनके पास बहुत सम्मान होता है, वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ते, भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करते। इसीलिए कुंती महारानी कहती है त्वाम अकिंचन गोचराम, के जो किंचन अकिंचन होते हैं, जो निर्धन होते हैं, उनको आप बहुत ही सरलता से प्राप्त होते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया मेरे साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और सेवा को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्णा।